एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जब तेरा ना हो कोई सहारा है एक ना जो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा है एक ना जो तेरा किनारा। जब तू सोचे निर्बल है तू है एक ना जो होगा तेरा बल। यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु Yeshua। जब अपनों ने छोड़ा तुझे है एक ना जो सीने से रखता तुझे जब तेरे शत्रु घेरे तुझे है एक ना बचाएगा जो तुझे सबने कहा होगा तेरा है एक ना जो कहता शुरू है अब यीशु नाम यीशु नाम पुकारो तुम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को आशीषित कर जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। मेरे श्रोताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उनके मनों को खोल दे, तेरे वचनों को समझने के लिए मदद कर और तेरे राह में चलने के लिए उनकी सहायता कर। पिता परमेश्वर मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरा वचन को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है शादी के वस्त्र के बिना, भाग एक। प्यारो, मसीह का एक और दृष्टांत हम मत्ती 22 का 114 में पाते हैं, वह है विवाह के वस्त्र के बिना। विवाह के वस्त्र का दृष्टांत हमारे सामने सर्वोच्च महत्व का पाठ प्रस्तुत करता है। विवाह द्वारा मानवता का देवत्व के साथ मिलन दर्शाया जाता है। विवाह का वस्त्र उस चरित्र को दर्शाता है जो उन सभी में होना चाहिए जो विवाह के लिए योग्य अतिथि माने जाएंगे। इस दृष्टांत में महान भोज की तरह सुसमाचार के निमंत्रण यहूदी लोगों द्वारा इसकी अस्वीकृति और अन्य जातियों के लिए दया की पुकार को दर्शाया गया है। लेकिन जो लोग निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं उनके लिए यह दृष्टांत एक गहरा अपमान और अधिक भयानक दंड लाता है। दावत के लिए बुलावा एक राजा का निमंत्रण है या उस व्यक्ति से आता है जिसके पास आदेश देने की शक्ति निहित है या उच्च सम्मान प्रदान करता है। फिर भी सम्मान की सराहना नहीं की जाती है, राजा के अधिकार का तिरस्कार किया जाता है। जबकि गृह स्वामी के निमंत्रण को उदासीनता से देखा गया, राजा के निमंत्रण का अपमान और हत्या के साथ सामना किया गया। उन्होंने उसके सेवकों का तिरस्कार किया, उनका अपमान किया, उन्हें मार डाला। गृह स्वामी ने जब देखा कि उसके निमंत्रण का अनादर किया गया है तो उसने घोषणा की कि जिन लोगों को आमंत्रण किया गया है उनमें से कोई भी उसका भोजन नहीं खाएगा। लेकिन जिन लोगों ने उसके बावजूद ऐसा किया उनके लिए राजा की उपस्थिति और उसकी मेज से बहिष्कार से भी अधिक आदेश दिया गया है। उसने अपने सेनाएं भेजी और उन हथियारों को नष्ट कर दिया और उनके शहर को जला दिया। दोनों दृष्टांतों में दावत में मेहमानों की व्यवस्था की गई है, लेकिन दूसरे दृष्टांत में दिखाया गया है कि दावत में शामिल होने वाले सभी लोगों को तैयारी करनी होती है। जो लोग इस तैयारी की उपेक्षा करते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। राजा मेहमानों से मिलने के लिए आया और वहाँ एक आदमी को देखा जिसने शादी का वस्त्र नहीं पहना था और उसने उससे पूछा, मित्र तुम शादी का वस्त्र पहने बिना यहाँ कैसे आए? और वह अवाक रह गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, उसके हाथ पैर बांधो और उसे ले जाकर बाहर अंधकार में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। दावत के लिए बुलावा मसीह के शिष्यों द्वारा दिया गया था। हमारे प्रभु ने 12 और उसके बाद 70 लोगों को भेजा था यह घोषणा करते हुए कि परमेश्वर का राज्य निकट है और लोगों से पश्चाताप करने और सुसमाचार पर विश्वास करने का आह्वान किया। लेकिन इस बुलावे पर ध्यान नहीं दिया गया। जिन्हें दावत में बुलाया गया था वे नहीं आए। सेवकों को बाद में यह कहने के लिए भेजा गया, देखो मैंने अपना भोजन तैयार कर लिया है, मेरे बैल और मेरे पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह में आओ। मसीह के क्रूस पर चढ़ने के बाद यहूदी राष्ट्र को यही संदेश दिया गया था। लेकिन राष्ट्र जिसने परमेश्वर के विशिष्ट लोग होने का दावा किया, उसने पवित्र आत्मा की शक्ति में उनके लिए लाए गए सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया। कई लोगों ने इसे सबसे अधिक तिरस्कारपूर्ण तरीके से किया। अन्य लोग उधार के प्रस्ताव, महिमा के प्रभु को अस्वीकार करने के लिए क्षमा के प्रस्ताव से इतने हताश हो गए कि वे संदेश के वाहकों पर ही टूट पड़े। एक बड़ी उत्पीड़न हुआ। हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 8:1 में बहुत से पुरुष और स्त्रियां बंदीगृह में डाल दिए गए और स्तिपनुस और याकूब जैसे प्रभु के कुछ दूतों को मार डाला गया। इस प्रकार यहूदी लोगों ने परमेश्वर की दया को अस्वीकार कर दिया। परिणाम की भविष्यवाणी मसीह ने दृष्टांत में की थी। राजा ने अपनी सेनाएं भेजकर उन हथियारों को नष्ट कर दिया और उनके शहर को जला दिया। यरूशलेम के विनाश और राष्ट्र के बिखराव में यहूदियों पर घोषित न्याय आया। दावत के लिए तीसरा आह्वान गैर यहूदियों को सुसमाचार देने का प्रतिनिधित्व करता है। राजा ने कहा, शादी की तैयारी हो चुकी है, लेकिन जिन्हें बुलाया गया था वे योग्य नहीं थे, इसलिए तुम सड़कों पर जाओ और जितने लोग मिल जाए उन्हें शादी में बुलाओ। राजा के सेवक जो सड़कों पर निकले थे, जितने भी लोग मिले सभी को इकट्ठा किया, चाहे वे बुरे हो या अच्छे। यह एक मिश्रित समूह था। उनमें से कुछ लोगों ने दावत देने वाले के प्रति उन लोगों से कोई ज्यादा सम्मान नहीं दिखाया जितना कि उन लोगों ने जिन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने सोचा कि पहले आमंत्रित किए गए वर्ग के लोग राजा के भोज में भाग लेने के लिए किसी भी सांसारिक लाभ का त्याग नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने निमंत्रण स्वीकार किया उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने केवल अपने लाभ के बारे में सोचा। वे दावत के प्रावधानों को साझा करने आए थे, लेकिन राजा का सम्मान करने की कोई इच्छा नहीं थी। प्यारो, जब राजा मेहमानों से मिलने आया तो सभी का असली चरित्र सामने आया। दावत में आए हर मेहमान के लिए शादी का एक वस्त्र उपलब्ध कराया गया था। यह वस्त्र राजा की ओर से एक उपहार था। इसे पहनकर मेहमानों ने दावत देने वाले के प्रति अपना सम्मान दिखाया। लेकिन एक आदमी ने आम नागरिक की पोशाक पहन रखी थी। उसने राजा द्वारा बताई गई तैयारी करने से इनकार कर दिया था। उसे बहुत ज्यादा कीमत पर जो वस्त्र उपलब्ध कराया गया था उसे पहनने से उसने इनकार कर दिया। इस तरह उसने अपने स्वामी का अपमान किया। राजा के इस सवाल पर कि तुम यहाँ शादी का वस्त्र पहने बिना कैसे आए, वह कुछ भी जवाब नहीं दे सका। वह खुद में दोषी ठहरा था। तब राजा ने कहा, इसके हाथ पैर बांध दो और इसे ले जाकर बाहरी अंधकार में डाल दो। राजा द्वारा भोज में आए मेहमानों की जांच करके न्याय के कार्य को दर्शाया गया है। सुसमाचार भोज में आए मेहमान वे हैं जो परमेश्वर की सेवा करने का दावा करते हैं, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। लेकिन सभी जो ईसाई होने का दावा करते हैं वे सच्चे शिष्य नहीं हैं। अंतिम पुरस्कार दिए जाने से पहले यह तय किया जाना चाहिए कि धर्मी लोगों की विरासत को साझा करने के लिए कौन योग्य है। यह निर्णय मसीह के स्वर्ग के के बादलों में दूसरे आगमन से पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि जब वो आएगा तो उसका पुरस्कार उसके पास होगा, हर एक को उसके काम के अनुसार दिया जाएगा, कहता है प्रकाशित वाक्य 22:12। उसके आने से पहले इसलिए हर आदमी के काम का चरित्र निर्धारित किया जाएगा और मसीह के हर अनुयायी को उसके कर्मों के अनुसार पुरस्कार दिया जाएगा। जब मनुष्य अभी भी पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं तब स्वर्ग की अदालतों में जांच पड़ताल का कार्य होता है। परमेश्वर के सभी कथित अनुयायियों के जीवन की समीक्षा परमेश्वर के समक्ष की जाती है। स्वर्ग की पुस्तकों के अभिलेख के अनुसार सभी की जांच की जाती है और उनके कर्मों के अनुसार प्रत्येक की नियति हमेशा के लिए तय हो जाती है। भाइयों और बहनों, दृष्टांत में विवाह के वस्त्र द्वारा शुद्ध बेदाग चरित्र का प्रतिनिधित्व किया जाता है जो मसीह के सच्चे अनुयायियों के पास होगा। कलीसिया को यह दिया गया है कि उसे महीन मलमल स्वच्छ और सफेद वस्त्र पहनाया जाना चाहिए जिस पर दाग झुर्री या ऐसी कोई चीज ना हो, जैसा कि कहा गया है प्रकाशित वाक्य 19:8 में और इफिसियों 5:27 में। पवित्र शास्त्र कहता है कि महीन मलमल पवित्र लोगों की धार्मिकता है। यह हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 19:8 में। यह मसीह की धार्मिकता है, उसका अपना बेदाग चरित्र जो विश्वास के माध्यम से उन सभी को प्रदान किया जाता है जो उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। हमारे पहले माता पिता ने मासूमियत का सफेद वस्त्र पहना था जब उन्हें ईश्वर ने पवित्र अदन में रखा था। वे परमेश्वर की इच्छा के पूर्ण अनुरूप रहते थे। उनके स्नेह की सारी शक्ति उनके स्वर्गीय पिता को दी गई थी। एक सुंदर कोमल प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश पवित्र जोड़ा को ढकता था। प्रकाश का यह वस्त्र स्वर्गीय मासूमियत के उनके आध्यात्मिक वस्त्रों का प्रतीक था। यदि वे परमेश्वर के प्रति सच्चे रहते तो यह हमेशा उन्हें घेरे रहता, लेकिन जब पाप आया तो उन्होंने परमेश्वर से अपना संबंध तोड़ लिया और जो प्रकाश उन्हें घेरे हुए था वह चला गया। नग्न और लज्जित होकर उन्होंने अंजीर के पत्तों को एक आवरण के रूप में सिलकर स्वर्गीय वस्त्रों की जगह लेने की कोशिश की। आदम और हवा के अवज्ञा के दिन से ही परमेश्वर के नियम के उल्लंघन करता यही करते आ रहे हैं। उन्होंने अपने अपराध के कारण उत्पन्न नग्नता को ढकने के लिए अंजीर के पत्तों को जोड़ दिया है। उन्होंने अपने ही बनाए वस्त्र पहन दिए हैं। अपने ही कामों से उन्होंने अपने पापों को छिपाने की कोशिश की है और खुद को परमेश्वर के सामने स्वीकार्य बनाने की कोशिश की है, लेकिन वे ऐसा कभी नहीं कर सकते। मनुष्य अपनी खोई हुई मासूमियत की पोशाक की जगह कुछ भी नहीं ले सकता। कोई भी अंजीर के पत्ते का वस्त्र, कोई भी संसारिक नागरिक पोशाक उन लोगों द्वारा नहीं पहनी जा सकती जो मेमने के विवाह भोज में मसीह और स्वर्गदूतों के साथ बैठते हैं। केवल वह आवरण जो मसीह ने स्वयं प्रदान किया है हमें परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित होने के योग्य बना सकता है। यह आवरण उसकी अपनी धार्मिकता का वस्त्र मसीह हर पश्चाताप करने वाले विश्वास करने वाले आत्मा पर डालेगा। मैं तुझे सलाह देता हूँ, वह कहता है, मुझसे श्वेत वस्त्र खरीद ताकि तू उसे पहने रहे और तेरे नंगेपन की लज्जा ना हो। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3:18 में, स्वर्ग के करघे में बुने गए इस वस्त्र में मानव द्वारा बनाई गई एक भी डोरी नहीं है। मसीह ने अपनी मानवता में एक परिपूर्ण चरित्र का निर्माण किया और यह चरित्र वह हमें प्रदान करने की पेशकश करता है। हमारे सभी धार्मिकताएं मैले चिथड़े के समान है, जैसा कि भविष्यवक्ता यशायाह कहता है और लिखा है यशायाह 64:6 में। हम जो कुछ भी स्वयं करते हैं वह पाप से दूषित होता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों को दूर करने के लिए प्रकट हुआ और उसमें कोई पाप नहीं है। पाप को व्यवस्था का उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया गया है। 1 यूहन्ना 3 का 5 और 4 में। लेकिन मसीह व्यवस्था की हर आवश्यकता के प्रति आज्ञाकारी था। उसने अपने बारे में कहा, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। हाँ, तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में है। जैसा कि हम पढ़ते हैं भजन संहिता 40 का 8 पद में, जब वह पृथ्वी पर था तो उसने अपने शिष्यों से कहा, मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। यूहन्ना 15 का 10 पद में अपनी पूर्ण आज्ञाकारिता से उसने प्रत्येक मनुष्य के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना संभव बनाया है। जब हम खुद को मसीह के अधीन कर देते हैं तो हृदय उसके हृदय के साथ एक हो जाता है, इच्छा उसकी इच्छा में विलीन हो जाती है, मन उसके मन के साथ एक हो जाता है, विचार उसकी कैद में आ जाते हैं, हम उसका जीवन जीते हैं। यही है उसकी धार्मिकता के वस्त्र को पहनने का अर्थ। फिर जब प्रभु हम पर दृष्टि डालता है तो अंजीर के पत्ते का वस्त्र नहीं देखता, पाप की नग्नता और विकृति नहीं, बल्कि अपनी धार्मिकता का वस्त्र देखता है, जो यहोवा की व्यवस्था के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता है। विवाह भोज में आए मेहमानों का राजा द्वारा निरीक्षण किया जाता है। केवल उन्हीं को स्वीकार किया जाता है जिन्होंने उसकी आवश्यकताओं का पालन किया था और विवाह का वस्त्र पहना था। सुसमाचार भोज में आए मेहमानों के साथ भी ऐसा ही है। सभी को महान राजा की जांच से गुजरना पड़ता है और केवल उन्हीं को स्वीकार किया जाता है जिन्होंने मसीह की धार्मिकता का वस्त्र पहना है। प्यारो, धार्मिकता का अर्थ है सही काम करना और सभी का न्याय उनके कर्मों से ही होगा। हमारे चरित्र का पता हमारे कर्मों से चलता है। कर्मों से पता चलता है कि विश्वास सच्चा है या नहीं। सो प्यारो, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र को ग्रहण करें, उसे अपनाएं और उसके चरित्र समान चरित्र लाएं। इसके लिए परमेश्वर हमें मदद करता है, अपना आत्मा देता है, जब हम अपने मन को उसे देते हैं और जब हम उस धार्मिकता का वस्त्र जो प्रभु यीशु मसीह सेंटमेंट हमें देता है उसे हम दिल से ग्रहण करते हैं, तभी हम उसके विवाह के भोज में प्रवेश कर सकते हैं। प्यारो, आइए, यह हमें मुफ्त मिल रहा है, हमें केवल विश्वास करके ग्रहण करना है, स्वीकार करना है। परमेश्वर हमें अपनाते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस महान तोहफा के लिए और प्रभु यीशु मसीह के जीवन और वस्त्र जो धार्मिकता का वस्त्र है उसको अपनाएं और उसके राज्य में प्रवेश करें। परमेश्वर हम सबों की मदद करे कि हम उसके संग संगति में रहे, उसके साथ भोज करें और उसके अनंत राज में अनंत काल तक जीवन यापन करें। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम सबों को तो ग्रहण कर, जैसा तूने यह वचन दिया है कि तू हमें बुलाता है तेरे भोज में और उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को अपनाना है, धार्मिकता का वस्त्र जो तू हमें मुफ्त देने के लिए तैयार किया है। हमें केवल तेरे पास आना है, विश्वास से ग्रहण करना है। पिता परमेश्वर, हमें तेरा आत्मा दे कि हम तेरे पास आए और अपने जरूरत को समझे और तुझे ग्रहण करें, तेरे तोहफा को ग्रहण करें। आमीन।
जब तेरा ना हो कोई सहारा, है एक ना जो तेरा सहारा, जब तेरा ना हो कोई किनारा, है एक ना जो तेरा किनारा, जब तू सोचे निर्बल है तू, है एक ना जो होगा तेरा बल, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।